नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पितामह भीष्म से युधिष्ठिर महाराज तरह तरह के प्रश्न करते हैं। महाभारत में सारा ज्ञान शांति पर्व में समाहित कर दिया। कहते हैं महाराज, सांख्य योग, सांख्य में और योग में क्या अंतर है? पितामह भीष्म कहते हैं कि देखो, सांख्य और योग दोनों ही परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हैं। जो सांख्य के विद्वान है वो सांख्य को ऊंचा मानते हैं और जो योग के विद्वान है वो योग को ऊंचा मानते हैं। परंतु ईश्वर की सत्ता दोनों को स्वीकार करनी होती है। यदि सांख्य शास्त्र वाले ईश्वर को स्वीकार न करें तो वो दर्शन चलने वाला नहीं है। ऐसे ही योगी लोग यदि ईश्वर को नहीं मानेंगे तो उनका दर्शन वहीं समाप्त हो जाएगा। दोनों की अपनी अलग अलग पद्धतियां हैं, पर दोनों में ही प्राणियों पर दया करना, अपने धर्म का पालन करना, अंदर और बाहर की पवित्रता रखना, सच्चाई पर रहना, इंद्रियों का संयमन करना, ये अनिवार्य है। योगी योग के द्वारा और सांख्यिक ज्ञान के द्वारा इन अवगुणों को हटाकर अपने स्वरूप में स्थित होता है। जिस प्रकार से यथाचा निमिषा स्थूला जालम छित्वा पुनर्जलम प्राप्नुवंती, जैसे बड़े बड़े मछले हैं उनके सामने कोई छोटा सा जाल आ जाए, उस जाल को कुछ नहीं समझते, वो उसमें से पार हो जाते हैं। इसी प्रकार से योगी लोग होते हैं, वे अपने पापों का बहुत जल्दी नाश करके परमात्मा की तरफ चले जाते हैं। जाल के अंदर जैसे छोटे छोटे मछली, छोटी छोटी मछलियां फंस जाती हैं, इसी प्रकार से जो योग के अंदर निष्णात नहीं है वे संसार के भोगों में फंस जाते हैं। इसलिए मनुष्य को योगी बन करके अपने अंदर विशेष सामर्थ्य प्राप्त करनी चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा कि मनुष्य को इस खाने पीने में कहां कैसे ध्यान रखना चाहिए, तो कहा कि देखो, जिसको योग सीखना है, योग के मार्ग पर चलना है, उसको अपने युक्ताहार विहार से खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। भुंजानो यावकम रूक्षम, बहुत अच्छे अच्छे चिकने पदार्थ नहीं खाने चाहिए, शरीर में आलस्य रहता है और नाना प्रकार के रोग पैदा होते हैं, इसलिए बिल्कुल साधारण भोजन करना चाहिए। जैसे यावकम रूक्षम, जौ का दलिया है, बहुत हल्का सुपाच्य होता है, भूख भी नहीं लगती, माने उससे भूख का वेग भी शांत होता है और पचने में भी बड़ा सुगम होता है। इसके अलावा न्यायोपार्जित जो धन होता है उसी से ही वो अपने शरीर के लिए बहुत सूक्ष्म मात्रा में अन्न लेवे। खाने से योग में बड़ी सहायता मिलती है, बिल्कुल न भोजन करने से योग में बाधा पड़ती है, इसलिए बहुत संतुलन बना करके भोजन करना चाहिए। सांख्य योग के अनुसार विचार प्रधानता की बातें इन्होंने कई बताई हैं। ये विचार प्रधान में सार इतना ही है कि संसार के विषयों की तरफ इंद्रियां दौड़ती हैं, मन इनके साथ मिलता है, तो उस समय इस मन को खूब अच्छे ढंग से समझाना चाहिए कि देखो मन, इन विषयों इन इंद्रियों के साथ मिलकर तुम विषयों में जा रहे हो, तो ये विषय तुम्हारे लिए अपरिचित नहीं है, ये विषय तुम्हारे द्वारा खूब अच्छे ढंग से देखे हुए हैं, इनसे आज तक संतुष्ट नहीं हुए तो अब संतुष्ट होने का कोई प्रश्न नहीं है, ऐसे वैराग्य की भावना करनी चाहिए। जब तक अंदर से वैराग्य नहीं होगा तब तक युधिष्ठिर आत्मबोध नहीं हो सकता। वैराग्य तो अपने अंदर परमात्म तत्व की जिज्ञासा होती है तब होता है। ज्ञानम महद यद्य महत् सुराधन वेदेशु सांख्येशु तथैव योगे। महापुरुषों ने, वेदों ने, सांख्य शास्त्रों ने, पुराणों ने जो बात बताई है वही बात हमारे अनुभव के अंदर आने लगती है। युधिष्ठिर ने पूछा कि महाराज, हमने सुना है एक अक्षर होता है, एक क्षर होता है, ये क्षर और अक्षर क्या होता है महाराज? पितामह भीष्म कहने लगे कि देखो, एक बार वशिष्ठ जी महाराज जनक जी से मिले। जनक जी कई आते हैं यहाँ, केवल सीता जी के पति, सीता जी के पिता ही जनक जी नहीं है, अलग अलग ये जनक एक उपाधि है। अब वो भी जनक, वो भी नाम अलग अलग है, तो कराल नाम के जनक थे, उनसे वशिष्ठ जी का मिलना हुआ। तो उन्होंने पूछा कि महाराज, ये क्षर क्या होता है और अक्षर क्या होता है? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि जिसका क्षरण होता है, जिसका नाश होता है, जिसके टुकड़े होते हैं, जिसमें परिवर्तन होता है, उसका नाम क्षर है, और जिसका कभी विनाश नहीं होता है उसका नाम अक्षर है। ये क्षर और अक्षर की हम तुमको बहुत हल्की सी परिभाषा बता देते हैं। देखो, ये संसार में जो आपको दिखाई देने वाला रूप है ये सब क्षर है, चाहे देवलोक हो चाहे ब्रह्मलोक हो। देवताओं के 12,000 बरस का एक चतुर्युग होता है, उसमें से आप चौथाया हिस्सा काट दें तो 7,500 हुआ, तो वो इतना एक ब्रह्मा जी का दिन होता है। दशकल्प शतावृतम अहस्तद ब्राह्मम उच्यते। इस प्रकार से 1,000 चतुर्युगी का दिन और रात ब्रह्मा जी का होता है, तो वो भी ब्रह्मा जी का लोक भी क्षर है। अब ब्रह्मा जी से उत्पन्न होने वाले ये महाभूत वगैरह सब क्षर को ही तो प्राप्त होंगे। इसमें अक्षर नाम से अपने अंदर अनुभव करोगे तो आत्मा का स्वरूप अक्षर समझ में आ जाएगा, क्योंकि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, और वही आत्मा सर्वव्यापक है, तो वो परम आत्मा कहलाता है। तो आत्मा और परमात्मा का भेद मिट जाता है, यही वास्तव में अक्षर के अंदर विलीन होना है। ये काम जब तक इस जीव के द्वारा नहीं होता है तब तक मनुष्य को नाना प्रकार की योनियों में भटकना पड़ता है। शास्त्रों ने इसीलिए मुक्ति को सहज करने के लिए सबके अलग अलग कर्म बताए। ब्राह्मण का कर्म है, क्षत्रिय का कर्म है, वैश्य का कर्म है, शूद्र का कर्म है। ये कर्म कल्याण के मार्ग को सुगम बनाने के लिए है। इतनी सुगमता प्राप्त होने पर भी ममत्वेन आवृत है नित्यम, रात दिन संसार के पदार्थों में ममता रहेगी तो भाई सर्ग कोटि सहस्राणी मरणांतासु मूर्तिषु, तो वह हजार हजार करोड़ सृष्टि के अंदर ऐसे ही घूमता फिरेगा, कहीं उसको शांति नहीं मिलेगी। अज्ञानी जीव बार बार जन्म लेते हैं, चंद्रमा की तरह कलाओं के समान जीव की 15 कलाएं होती हैं। एकम से लेकर के अमावस्या तक और फिर पूर्णिमा तक ऐसे 15 कला होती, कला तो 15 ही होती है। जैसे पूर्णिमा का जो दिन होता है उधर शुक्ल पक्ष की एकम आती है, उसमें थोड़ा सा कम चंद्रमा की किरणें होती हैं। उधर चतुर्दशी होती है तो इधर द्वितीया होती है। ऐसे चलते 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 एक एक में कमी आते, 15 ही कला होती है। बस ये है कृष्ण पक्ष के अंदर तो कलाएं घटती जाती हैं, शुक्ल पक्ष में बढ़ती जाती है, वही कलाएं। इसी प्रकार से जीव है वो 10 इंद्रियां और 5 प्राण, इनके ये 15 कलाओं के अंदर घूमता रहता है, जबकि वो इनसे बिल्कुल अलग है। जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं, चंद्रमा बिल्कुल घटता बढ़ता नहीं, एक जैसा रहता है, ऐसे ही ये जीवात्मा है, ये घटता बढ़ता नहीं है, ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए मनुष्य को भविष्य के जन्म न मिले इधर पूर्ण रूप से विचार करना चाहिए। मनुष्य यदि आत्मज्ञान के अंदर निष्णात हो, आत्मज्ञान में निपुण हो, तो उस मनुष्य के लिए कोई किसी प्रकार का जन्म नहीं हो सकता है। वो परमात्मा अणु से अणु है, तदेव अणु अणुभ्यो अणु तन महद्यो महत्तरम, अणु से अणु भी वही है और महान से महान भी वही है, उसके बिना इस जगत की कोई स्थिति नहीं है। विद्या और अविद्या क्या है? जीव अपने को जान लेता है, इसका नाम विद्या है। और ये प्रकृति से लेकर पूरा जगत है, ये सब अविद्या है। जब जीव को विद्या के द्वारा अपने आप का बोध हो जाता है, उस समय में ये जीव मछली की तरह जाल में फंसता नहीं है। ये उदाहरण कई बार दिया है यहां। उसके मन में कई बार ये विचार आता है कि देखो मैं निर्विकार हूं और मैं प्रकृति के द्वारा कैसे ठगा गया, वंचितो स्यान्या यद्धि, मैं तो इनसे ठगा गया, इसमें मेरा अपराध है या जगत का अपराध है? ये बिचारी प्रकृति जड़ है, ये संसार सारा जड़ है, अपराध तो मेरा ही है। अपराध हो ये हम मम, मेरा अपराध है कि मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं इससे ऊंचा होकर के भी अपनी ऊंचाई को अपने बड़प्पन को नहीं समझ सका, मैं उस परमात्मा को नहीं समझ सका, ऐसे उसके मन में बहुत विचार आया करते हैं। जीवात्मा तत्वों का आश्रय लेता है, शरीर आदि का आश्रय लेता है तो अपने को शरीर वगैरह ही मानने लग जाता है, उसको होश नहीं रहता है कि मैं शरीर से अलग हूं क्या। इससे बड़ा जीव अपने लिए स्वयं कौन सा अज्ञान पैदा करेगा। देखो राजन, अज्ञान कोई किसी का बनाया हुआ नहीं है, ये जीव का अपना ही बनाया हुआ अज्ञान है। इसलिए जीव को अपने स्वरूप पर विचार करते ही तत्काल अपना अज्ञान समाप्त करने का उसको बहुत अच्छा अवसर मिलता है। परंतु ये जो मैंने तुमको बातें कही हैं कि हे राजन तुम आज ही और अभी अपना कल्याण कर लो, ये बात किसी और को मत कहना। कराल माते भयमस्तु किंचित एतत् श्रुतं ब्रह्म परम त्वयाद्य यथावद उक्तम परमम पवित्रम विशोकमत्यंतमनादि मध्यम। ये जो मैंने तुमको ज्ञान दिया है उसको अभी 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 तुम उससे मुक्त हो जाओ। अभी मुक्त होने की जो बात मैंने तुमको कही है ये हर आदमी को नहीं कहना, क्योंकि ऐसा कहने पर उसको श्रद्धा तो होगी नहीं कि अभी मुक्ति हो सकती है, श्रद्धा तो होगी नहीं, उल्टा वो अश्रद्धा ही करेगा। नावेद निष्ठस्य जनस्य राजन प्रदेयमेतत् परमं त्वया भवेत् विदित समानाय विबोध कारणम प्रबोध हेतु प्रणतस्य शासनम। जो शरण में आए जिसको ज्ञान की बड़ी जिज्ञासा हो उसी को ये ज्ञान देना, हर किसी को ज्ञान दोगे तो ये उपहास बना लेंगे। कराल उससे बड़े प्रसन्न हो गए। पितामह भीष्म ने कहा कि देखो एक बार इस जनक वंश के अंदर एक राजकुमार था जिसका नाम था वसुमान, वो शिकार खेलने के लिए गया, निरपराध पशुओं को मारना ये राजकुमार के समझ में नहीं आया था। शिकार खेलते खेलते घनघोर जंगल में पहुंच गया, वहां पर एक ऋषि उसको दिखाई दिए। वो उस ऋषि के आश्रम के पास से गया, उसकी वृत्ति एकदम बदल गई। मन में विचार आया कि अरे निरपराध प्राणियों की हिंसा करने से क्या होगा, एकदम रुक गया कि ऐसे मेरे विचार क्यों आए, कोई न कोई बड़ा महर्षि यहां रहते होंगे। अब शिकार एक ऐसी चीज है, देखो शिकार होती है निशाना जहां एकदम लगा हुआ है वो उसके बाद उसका अनुसरण किए बिना रह नहीं सकता है। ताश के पत्ते खेलते हैं और जब वो बाजी देखी जाती है ताश छूट नहीं सकता। शतरंज की जो गोटियां रखी हुई है बीच में खेल को विराम करना बड़ा मुश्किल होता है। शतरंज वाले अपनी गोटियां ज्यों की त्यों यूं रख देते थे ताले में कि आज इतना ही खेल करें कल फिर खेलेंगे। राजाओं का महाराजाओं का ये खेल होता था, यूं रख देते थे। तो ये चीजें ऐसी जो बीच में इनको छोड़ा नहीं जाता है। उस राजकुमार ने देखा कि मेरे अंदर ये इतनी बातें कैसे पैदा हुई, मैं तो एकदम शिकार के पीछे था और एकदम बड़ी शांति, ऐसा लगा कि क्यों किसी का शिकार करे, क्यों प्राणी को अवध करे, बात तो मेरे अंदर अच्छी पैदा हुई है। इधर उधर देखा तो एक शांत ऋषि बैठे हुए, बड़े शांत, भोड़े भाड़े सीधे साधे। दर्शन करने से जहां अपार आनंद का अनुभव हो, वो वसुमान अपने घोड़े से उतरा और बड़ी श्रद्धा से ऋषि के चरणों में ही हूं शीश नवाया और हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि प्रभु सुगम उपाय बताओ। आपके तपस्या के परमाणुओं से मेरे अंदर इतना असर पड़ा है तो आपके वाणी का मेरे अंदर कितना असर पड़ सकता है। ऋषि बहुत प्रसन्न हुए, कहने लगे राजकुमार छोटी अवस्था है, अभी तुम किशोर हो, तुम्हारे अंदर जो ये भावना पैदा हुई है तो याद रखो, एक तो किसी के साथ प्रतिकूल व्यवहार मत करना, दूसरी बात संसार के भोगों से वितृष्णा रखना, वैराग्य रखना, क्योंकि काम पिपासा कभी शांत नहीं हुआ करती है। ये इंद्रियां आज तक किसी की तृप्त होती नहीं दिखाई दी, यदि ये तृप्त होंगी तो ज्ञान के द्वारा तृप्त होंगी, भोग के द्वारा इंद्रियों को कोई तृप्त नहीं कर सकता। धर्म का अनुष्ठान करो, सब प्राणियों के अंदर अपना ही स्वरूप समझो, जिसका तुम शिकार कर रहे हो। हे राजकुमार, क्या ऋषि, वो तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम अपना ही शिकार कर रहे हो, इसलिए अपने वृत्तियों को रोको। दान देओ तो कभी दान देकर पश्चाताप मत करो, जन्म से और कर्म से दोनों से शुद्ध जो ब्राह्मण होता है उस वो दान का पात्र होता है। और स्त्रियों में जो अपने पति का खूब सम्मान करती है, चाहे उसकी जाति स्त्री हो, लेकिन यदि वो पतिव्रता है, पति का सम्मान करती है, तो एक ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद सत्कर्मा विद्वान ब्राह्मण को दान देने पर इतना पुण्य नहीं होता जितना उस पतिव्रता स्त्री को दान देने का पुण्य होता है। हे राजकुमार, जिसके शरीर पर थोड़ी बहुत धूल लगती है उसको वो फूंक दे करके ठीक कर लेता है, लेकिन जहां कई दिनों का मैल जमा हुआ होता है उसको तो बहुत दिनों तक रगड़ करके ही साफ किया जाता है। इसी प्रकार से ईश्वराराधन है, भगवान की आराधना है, ये हमारे जन्म जन्मांतर के मैल को साफ करने का सबसे बड़ा उपाय है। ईश्वर आराधना यूं ही नहीं होती है राजकुमार, ये ईश्वर आराधना अच्छे संत महात्माओं का संग करने से होता है। हे राजकुमार, तुम बड़े धैर्यवान हो, इसलिए मैं तुम्हें यह कहता हूं कि जितना तुम सत्संग कर सको, सत्संग करना यही तुम्हारा सच्चा साथी होगा, यही तुम्हारे लिए ज्ञान है, अब तुम जा सकते हो। युधिष्ठिर, वो छोटा सा बालक, 16 वर्ष का बालक, इतने अच्छे स्वभाव वाला हुआ कि आगे जाकर उसके पास बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग आते थे और उनके पास बैठकर वो सत्संग किया करते थे। देह त्याग के समय में कहां कहां से प्राण निकलते हैं, तब कहां कहां व्यक्ति जाता है, इसके उत्तर में पितामह भीष्म ने कहा कि याज्ञवल्क्य और जनक के संवाद में याज्ञवल्क्य जी ने पहले सृष्टि का खूब लंबा चौड़ा विस्तार से वर्णन किया और फिर एक एक बात बताई कि देखो पैरों के अंदर से प्राण निकलता है तो वो विष्णु लोक में पहुंचता है, जंगाओं से प्राण निकलता है तो वसु देवताओं को प्राप्त होता है, वसु नाम के देवता, घुटनों से प्राण निकलता है तो साध्य देवों के यहां पर पहुंचता है। अब आप हम सब सोचेंगे कि ऐसे कैसे होता है, प्राण तो उस शरीर के नौ छिद्रों से निकलता है। हमारे शरीर में नौ छिद्र है, ये तो बड़े छिद्र है, लेकिन ये रोम रोम है या त्वचा के ऊपर रोम, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इनसे भी प्राण निकलते हैं। पसलियों से प्राण निकलता है तो मरुतो देवान, और नाभ्याम इंद्र है, नाभि से प्राण निकलता है तो इंद्र को प्राप्त होता है। ग्रीवा से, गर्दन से प्राण निकलता है तो वापिस मनुष्य बन करके आता है। मुख से प्राण निकलता है तो विश्व देव में पहुंचता है। कान से प्राण निकलता है तो दिशा रूपी अधिष्ठात्री देवी के गोद में जाकर रहता है। मस्तक से प्राण निकलता है तो ब्रह्मलोक में जाता है। के महाराज, कब किसका प्राण निकले, इसका पूर्वाभास कैसे हो, पहले पता कैसे चले? कि देखो, जिस आदमी को ध्रुव तारा और अरुंधति तारा ये दो न दिखें, समझना चाहिए एक साल में राम नाम सत है। अथवा अपनी अपना मुंह दूसरे की आंख में दिखाई न दे, जैसे मैं आपकी आंख में देखूं और आपकी आंख में मेरा रूप दिखाई न दे, तो साल भर में जय सियाराम। और जिस आदमी की कांति खूब, चेहरा खूब चमकता है, लेकिन एकदम चेहरा कांतिहीन हो जाता है, अथवा अति प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि खूब काम करती है, एकदम वो बुद्धि है, क्या है, दिन है कि रात है, क्या है पता नहीं चलता, तो छह महीने के अंदर मरने वाला होता है। जिसको शास्त्र की बातें अच्छी नहीं लगती, ब्राह्मणों का दान पुण्य अच्छा नहीं लगता, देवताओं की पूजा अच्छी नहीं लगती, भगवान की चर्चा अच्छी नहीं लगती, वो छह महीने में जाने वाला होता है। सूर्य और चंद्रमा के अंदर यूं छेद दिखाई दे, समझना चाहिए मकड़ी जाल की तरह, तो वो सात रात्रि में ही मरने वाला है। और मंदिर के अंदर जाए और मंदिर अंदर बहुत अच्छे सुगंधित पदार्थ ही मंदिर के अंदर लोग जो है प्रयोग में लाते, अगरबत्ती है और है कपूर है, वहां जाए और मंदिर के अंदर जाने पर उसको शव की गंध आए, दुर्गंध आ रही है, तो शव गंध आती हो, समझना चाहिए सात दिन में राम राम सत है। कर्ण नासाव नमनम दंत दृष्टि, दंत दृष्टि विरागिता, और कान है यूं यूं टेढ़ा हो जाए और नाक है यूं टेढ़ा हो जाए। कर्ण नासाव नमनम दंत दृष्टि विरागिता, दांत का रूप रंग एकदम बदल जाए और आंखों का रंग भी बदल जाए, यूं इधर करे तो इधर पड़ा है, यूं इधर करे तो यूं कर दिया, कुछ होश नहीं है, संज्ञा लोप है, निरूष्मत्वम, बैजी ने आकर नाड़ी देखी, कुछ नाड़ी कुछ नहीं है, शरीर में गर्मी नहीं है, तो बस सद्यो मृत्यु बस हम मरने ही वाला है। अकस्मात बाई आंख से टप टप आंसू पड़ना लगे और यहां मस्तक से धुआं निकलना लगे, तो बस अब थोड़ी देर में ही मृत्यु होने वाली है। इसलिए भाई, मनुष्य को इन लक्षणों के घटित होने से पहले ही आत्मकल्याण कर लेना चाहिए। याज्ञवल्क जी कहते हैं कि एक बार मैंने बड़ी भारी तपस्या की, तो हे जनक, सूर्य भगवान मेरे सामने प्रकट हुए, मैंने उनका अभिनंदन किया और कहा कि महाराज, बड़ी कृपा की, आपने दर्शन दिए। उनका कि भाई, तुमने बड़ी विलक्षण तपस्या की, खुश हो गए, कोई वरदान मांगो। तो उसने वरदान मांगा कि वो याज्ञ बोल के थे, मैंने वरदान मांगा कि यजुंसी नोपयुक्तानि, जिस आज तक आपने यजुर्वेद का उपदेश नहीं दिया, वो यजुर्वेद का ज्ञान मुझे करा दो। तब कहा कि अच्छी बात है, कहा मुंह खोलो, अब तुम्हारे अंदर सरस्वती प्रवेश करेगी। तो मैंने मुंह खोल दिया, सूर्य भगवान ने यूं देखा, उनकी गर्मी गई मेरे मुंह में, मैं तो जलने लग गया एकदम। अब मैं इतना जलने लगा, क्या करूं क्या करूं, पास में तालाब था, तालाब में डूब गया, वहां भी जलन नहीं मिटी। मैंने कहा हे सूर्य भगवान, बड़ी जलन हो रही, कोई बात नहीं, ये जलन होने दो, इस जलन से तुम्हारे अज्ञान के जितने पाप है सब नष्ट हो रहे हैं और उसके बाद तुमको ये ज्ञान हो जाएगा। फिर उसके बाद मुझे यजुर्वेद का ज्ञान हो गया और उस यजुर्वेद का फिर मैंने विस्तार से अपने शिष्यों को पढ़ाया। मैंने देखा कि जलन क्यों हुई है, तो भजन साधन करने के बाद अपने इष्ट की प्राप्ति के उस समय में जब यदि जलन होती है तो इसका अर्थ है हमारे पापों का क्षय होता है। पापों का क्षय होना बहुत जरूरी है। भगवान की भक्ति करते हैं तो उस समय में भी भक्त के मन में भगवान के प्रति बड़ी बड़ा विरह होता है। ज्ञान की प्राप्ति में भी उसके अंदर जो है जिज्ञासा की तीव्रता आती है। ज्ञानान मोक्षो जायते राज सिंह, हे राजेंद्र, ज्ञान के द्वारा मोक्ष होता है, परंतु ज्ञान के लिए जब पिपासा जागृत होती है, जलन होती है, तब ये सब होता है। तो ये सब बातें जनक जी ने सुनी तो विदेह राज्यम तदा प्रतिष्ठाप्य सुतस्य, वही बेटों को तो राज्य दे दिया और अपने आनंद के साथ में उस ज्ञान का वे जो है प्रचार करने, ज्ञान के अंदर डूब गए। युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज जिसके पास खूब ऐश्वर्य है, खूब धन है और बहुत बड़ी आयु है, वो अपने मृत्यु का उल्लंघन कैसे कर सकता है? कि भैया मृत्यु का उल्लंघन अर्थात मृत्यु आवे ही नहीं, कि ऐसा हो नहीं सकता है। यहां इस संसार में कौन ऐसा है जो दिन और रात के चक्र से बचा हुआ हो? ये दिन और रात है, ये भगवान का चक्र है, ये हरदम चलता रहता है, इसी को काल चक्र बोलते हैं। इसलिए कहते हैं राजन, इस संसार रूपी मार्ग के अंदर कोई किसी का सच्चा साथी नहीं है, न अयम अत्यंत संवास है, यहाँ सदाई साथ में रहेंगे, स्त्री साथ में रहेगी कि बेटा साथ में रहेगा कि शरीर साथ में रहेगा, कोई साथ में रहने वाला नहीं है। कुतूहम आगत है, आदमी को हरदम विचार करना चाहिए, कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ जाऊंगा, कस्मिन स्थित है मैं, किस में बैठा हुआ हूँ, क्वे भविता, आगे मेरा क्या होगा, कस्मात किमनु सोचसी, और किसके लिए मैं शोक कर रहा हूँ, ऐसा बार बार विचार करना चाहिए। इसके बिना मनुष्य का कोई लाभ नहीं है। युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज गृहस्थाश्रम को त्यागे बिना भी कोई मोक्ष को प्राप्त हो सकता है क्या? यदि हुआ है तो बताओ। तो पितामह भीष्म ने कहा कि देखो, एक धर्मध्वज नाम के जनक जी थे, मिथिला के राजा, उनकी बड़ी प्रसिद्धि थी कि ये बड़े मोक्ष को जानने वाले हैं, ये है वो, बहुत बड़ी महिमा थी। उन्हीं दिनों में एक सुलभा नाम की सन्यासिनी थी, बहुत जबरदस्त विदुषी थी, बहुत जानती थी, वो शरीरों को बदल लेती थी, किसी के शरीर में प्रवेश कर जाती थी, तत्व को खूब अच्छी तरह से जानते हैं। तब उसने देखा कि इतना क्या जनक जानेगा, कितना जनक में ज्ञान है, इसलिए वो बहुत सुंदर स्त्री बनकर के और जनक जी के राज्य में गई, बड़ा श्रृंगार किया और भिक्षा लेते विले वहां पहुंची जनक जी महाराज के महल पर। जनक जी भिक्षुकों को अपने हाथ से भिक्षा दिया करते थे, इतने बड़े राजा होकर। आज उनके दरवाजे पर एक बहुत सुंदर सन्यासिनी भिक्षा लेने के लिए आई है। देखा जनक जी ने उसको, फिर जो है उन्होंने देखा कि है भाई भिक्षुणी है, अपने क्या है, अपने दे दो, भिक्षा दे दी। और मन में सोचने लगे कि कौन है, कहां से आई है, क्या है। तो भिक्षा उस भिक्षुक ने कहा, भिक्षुकी ने कहा कि मैं यहां बैठ के भोजन कर लूं कि हां खूब आनंद से भोजन कर लो। भोजन कर ली। इधर राजा जाकर के अपने दरबार में बैठा, विद्वान पुरुष ज्ञानी महात्मा उनके बीच में रोज सत्संग वगैरह होता था, राज्य की भी चर्चा चलती थी पर प्राय सत्संग होता था। जब सुलभा ने ये देखा कि राजा इस समय जाकर अंदर बैठ गए, तब वो सभा में पहुंची और कई देर तक जो है जनक जी को यूं देखती रही। जनक जी भी उसको देखते रहे, दोनों के नेत्र आपस में यूं टकराए तो बस वो योग बल से जनक जी के शरीर में चली गई। जनक जी को पता चल गया कि हमारे शरीर में आई है, दूसरों को ऐसा लगता है कि ये सामने खड़ी है। अब जनक जी ने उनको कहना चालू किया, भगवत्या क्वचार्येयम् कृता तौ च गमिष्यसि। हे भगवती, आप स्त्रियों को संन्यास लेने के लिए कब, किसने कहा, किससे दीक्षा ली है, कहां जाएंगी, किसी से बिना पूछे ही संन्यास लिया है या किसी की शिष्यता स्वीकार करके संन्यास लिया है, आपका गुरु कौन है, किस लिए संन्यास लिया है। तुम्हारा यहां आना कैसे हुआ है, मेरे विषय में भी जानना चाहती हो तो मैं पंच शिख नाम के एक गुरु का शिष्य हूं। मेरा नाम धर्मध्वज है। सांख्य योग और ज्ञान योग, राजयोग, इन सब के विषय में मुझे मेरे गुरु ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है। देखो इस समय तुम मेरे अंदर आ चुकी हो, तो अंदर से तुम्हारी और हमारी बातचीत होती है। मैंने राजा के लिए जो छत्र वगैरह वो सब मैंने छोड़ दिए हैं। तुम एक राजा से बात नहीं कर रही हो, तुम एक पंचशिख के शिष्य धर्मध्वज से बात करती हो। आपको ये विचार करना चाहिए कि आपने ऐसा सुंदर शरीर क्यों बनाया, और यदि आप यहां आए हैं तो यहां किसको पूछ करके आए हैं। ये मेरी विदेह नगरी है, विदेह नगरी में सन्यासिनी को इतने सुंदर स्वरूप में प्रवेश करने का हमारे यहां विधान नहीं है। जब तक मनुष्य के अंदर वैराग्य नहीं होता तब तक उसके अंदर ज्ञान स्थायी रूप से टिकता नहीं है। ज्ञान की भूमि वैराग्य है। जिस प्रकार से बीज भुना हुआ होता है वो बीज वापस उगता नहीं है, इसी प्रकार से जब तक वैराग्य के अग्नि के अंदर अपने ज्ञान को भुना नहीं है तब तक संसार का जन्म मरण होता ही रहता है। मेरी स्थिति को तुम नहीं समझती हो देवी, मेरा ये दाहिना हाथ, इसके ऊपर खूब चंदन लगा है, इसको खूब पूजे, और दूसरा मेरा ये बायां हाथ, कोई कुल्हाड़ी लेकर इसको काटने लगे तो मैं न तो इस दाएं हाथ की पूजा करने वाले की प्रशंसा करूंगा और न इसको काटने वाले के लिए एक शब्द भी कहूंगा। मैं अपने में मस्त हूं, मुझे मेरे गुरु ने ये शिक्षा दी है कि कि देखो ये सन्यासी लोग दंड धारण करते हैं और राजन तुम छत्र चमर धारण करते हो, क्या फर्क पड़ता है? चाहे बाहर की कोई चीज धारण करो या त्याग करो, तुल्य हेतु परिग्रह, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता। अपने अपने जगह अपनी अपनी चीजों का ग्रहण और त्याग करना ये बाहर का व्यवहार होता है। एक आदमी गृहस्थ को छोड़ करके संन्यास आश्रम में चला गया तो गृहस्थ का छत्र चमर सब छोड़ दिया तो वहां दंड धारण कर लिया, लाल कपड़े कर लिए। अच्छा, लाल कपड़े कर लिया, रुंड मुंड हो गया, ये सब सुविधा के लिए तो हुआ है। तो रुंड मुंड होने की क्या जरूरत थी, लाल कपड़ा करने की क्या जरूरत थी? काषाय धारणम मौंड्यम त्रिविष्टब्धम कमंडलम, ये कमंडल वगैरह लेकर अपने को एक चिन्ह चिन्हित करना न मोक्ष है, ये मोक्ष का रूप नहीं है। यदि गृहस्थी साधु का चिन्ह धारण करता है तो वो गृहस्थी अपने गृहस्थ के चिन्ह में परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। न तो ये दरिद्रता में मोक्ष होता है और न ये धनाढ्य में कोई मुक्ति बाधा देने वाली होती है। तुम यहां आई भिक्षुकी, तुम्हारे यहां आने से बड़ा भारी व्यतिक्रम हुआ है, तुमने मेरे अंदर प्रवेश किया है। तुमने ये विचार नहीं किया कि भाई तुम ब्राह्मणी हो मैं क्षत्रिय हूं, तुम मेरे अंदर कैसे प्रवेश की? ये वर्ण संकरता है। मैं गृहस्थ आश्रम में हूं, तुम संन्यास आश्रम हो, ये आश्रम संकरता है। मेरा गोत्र और है, तुम्हारा गोत्र और है, गोत्र संकरता है। और जो है आपके शायद कोई पति भी जीवित रहे होंगे, कहीं परदेश चले गए होंगे, आप पराई स्त्री यहां दूसरे पुरुष के अंदर प्रवेश किए हैं, ये धर्म संकरता है। सब प्रकार से आप संकरता में भरी पड़ी हो, आपको मेरा स्पर्श नहीं करना चाहिए, मेरा चरित्र एकदम दूध के समान निष्कलंक है, इसलिए आपको मेरे अंदर प्रवेश बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। जनक जी की बात सुनकर के सुलभा ने बड़ी मुस्कुराहट से उत्तर दिया। कहने लगे, महाराज मैंने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी थी, आप मोक्ष वेत्ता हो, कल्याण में गृहस्थ में रहते हुए आप अपना कल्याण कर लेते हो, अब मेरी बात आप सुनो। मैं कोई काम क्रोध लोभ मोह के अंदर फंसी हुई ऐरी गैरी नथु गैरी नहीं हूं, आपको समझना चाहिए। जो आपके यहां भिक्षा ले रही है और वो दृष्टि के द्वारा आपके अंदर जा रही है, कोई न कोई उसमें विशेषता तो होगी। आपने इतनी बात कही, वक्ता कौन होता है? वक्ता वो होता है जो बोलने से पहले खुद भी समझता हो और ये भी ध्यान में रखो कि मेरी कही हुई बात श्रोता भी समझेगा कि नहीं। यदि वो स्वयं ही नहीं समझता है तो क्या उपदेश देगा, और यदि वो श्रोताओं को नहीं समझा सका तो क्या उपदेश देगा। इसलिए आप पहले तो ये आपने जो प्रश्न किया ना कि आप कौन हैं, ये प्रश्न आपका समझ में नहीं आया। आप एक तरफ ये मानते हो कि एक परमात्मा के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, तो आपको मेरे शरीर की सुंदरता का भी ज्ञान हुआ, तो ये परमात्मा को भूल करके आपके अंदर मेरे अंदर शरीर की सुंदरता का ज्ञान हुआ। और आप और मैं, ये जो भेद का ज्ञान आपके अंदर हुआ, ये भी परमात्मा को भूलने से हुआ। आप सर्वत्र पृथ्वी पर जाइए राजन, जहां भी जाएंगे प्रकाश किसका है? सूर्य का। प्रकाश किसका है? सूर्य का। सूर्य का ही प्रकाश होता है। वहां जाकर एक देश से छोड़कर, मिथिला को छोड़कर दूसरे देश में जाकर कहेंगे कि ये प्रकाश किसका है? समझी हुई बात है कि प्रकाश है तो सूर्य का है। ऐसे यदि कोई अस्तित्व किसी का है तो वो परमात्मा का है। आत्मन्येव आत्मना आत्मानम यथा त्वम अनुपश्यसि एवमेव आत्मना आत्मानम अन्यस्मिन किम न पश्यसि, तुम अपने आप को मानते हो कि हम हैं, तो क्या दूसरे नहीं है? दूसरे नाम की चीज की सत्ता ही नहीं है। आपने कहा कि मैंने ऐसे योग्य गुरु से ऐसी ऐसी बातें सीखी है। देखो महाराज, ज्ञान की बात सीखना अलग होता है और उस ज्ञान के अनुसार दृष्टि बनाना और होता है। कभी कभी मनुष्य के सामने ऐसी परिस्थिति आती है कि क्या करे, रोज दान देगा तो धन खाली हो जाएगा, नहीं देगा तो दुनिया की दुराशीष मिलेगी, क्या करना चाहिए? ऐसे ऐसे कई जटिल प्रश्न होते हैं विद्वानों के लिए, शूरवीरों के लिए ऐसे ऐसे अवसर आते हैं। देखो महाराज, इस संसार में सुख बहुत थोड़ा है। तदल्प सुखम अत्यर्थम बहु दुखम असारवत, और दुख बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए घास फूस में लगी हुई आग के समान क्षण भंगुर इस राज्य के अंदर आप कैसे फंसे हुए हो? राजा ने कहा कि देवी, मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं सका हूं। आत्मा की दृष्टि से यदि आप हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने ही स्त्री रूप धारण करके यहां आने का प्रयास कैसे किया? कि मैंने आपके विषय में बहुत बड़ी बातें सुनी थी, मेरा नाम सुलभ है और मैं राजर्षि प्रधान नाम की राजर्षि की कन्या हूं। मैंने ऐसे ऐसे यज्ञ किए हैं, क्या बताएं, कि बड़े बड़े द्रोण पर्वत है, शतश्रृंग पर्वत है, चक्रद्वार नाम के पर्वत है, ये तो मेरे यज्ञ वेदी में ईंट का काम करते थे। माने एक ईंट इधर लगती है, एक ईंट इधर लगती है, एक ईंट इधर लगती है, तीन पर्वतों के बीच में हमने कितना विशाल यज्ञ किया था, शायद आपने सुना होगा। मैंने ये सन्यासिनी का जो वेश किया है, ये छद्म वेश मैंने धारण नहीं किया है, कपट से धारण नहीं किया है, किसी का धन हरने के लिए नहीं किया है। इसलिए न मेरे में धर्म संकरता है और न मेरे अंदर कर्म संकरता है। मैंने केवल आपके गृहस्थ धर्म के अंदर मोक्ष की बात जानने के लिए ऐसा रूप बनाया है। इसलिए आज रात तो मैं आपके स्वरूप के अंदर रहूंगी और आपका पूरा व्यवहार समझूंगी और फिर कल मैं यहां से चली जाऊंगी। तब राजा जनक ने देखा कि बहुत श्रेष्ठ है, उन्होंने बड़ा सम्मान किया और कहा कि मेरे ज्ञान में कोई त्रुटि हो तो आप निसंकोच कह देना। जब जाने लगी तब उस समय में वो कहने लगे कि महाराज, आपके व्यवहार में कोई त्रुटि नहीं है, आपने मेरे लिए जितने आक्षेप लगाए वो लगाने चाहिए, इसलिए आपके व्यवहार को समझने और देखने से मैं अब आप ही का प्रचार आपके गृहस्थ में रहते हुए मनुष्य योगी बन सकता है, इस बात का प्रचार करने के लिए अब मैं आगे जा रही हूं। अब आगे युधिष्ठिर जी महाराज सुखदेव जी का चरित्र पूछते हैं। वो सुखदेव जी का चरित्र है वो अब कल से प्रारंभ होगा।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण